ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए हैं। दो दिन की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को जर्मनी जाएंगे। डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को स्विट्जरलैंड जाएंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। क्राउन प्रिंस की भारत की यह पहली यात्रा है। उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात के कई मंत्री और व्यापार शिष्टमंडल भी आया है। वे कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री नहयान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच होने के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जम्मू के रामबन जिले में एक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पलौरा में एक रैली में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पहले ही राज्य में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इस बीच भाजपा ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से त्यागपत्र देने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में जनता का आक्रोश स्वाभाविक और गैर राजनीतिक है और वे पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और त्वरित कदम नहीं उठाया। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क के नाम पर 8,000 रूपये मांगने के पत्र से धोखाधड़ी के लिए लोगों को आगाह किया है। सरकार ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज किया है और कहा है कि यह पत्र फर्जी है। बिहार में मगध एक्सप्रेस के डिब्बे अलग होने की घटना के 3 घंटे बाद बक्सर दानापुर रेलखंड की डाउन लाइन पर रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस की 2 बोगियों के बीच कपलिंग फेल होने के कारण 9 डिब्बे इंजन से अलग हो गए थे। इस घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल लखनऊ में एक इमारत में ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है, 28 लोग घायल हैं। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया है। सुखजीत, उत्तम सिंह और अभिषेक ने गोल किए। वर्तमान चैंपियन भारत का अगला मुकाबला सोमवार को जापान से होगा। उधर पेरिस पैरालंपिक खेलों का भव्य समापन समारोह आज रात 11:30 बजे स्टेट डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।